नमस्कार 100.1 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी मुंबई की एफएम गोल्ड प्रसारण सेवा में आपका स्वागत है। छूलो आसमान कार्यक्रम में आज आपसे रूबरू होंगे एनरॉक प्रॉपर्टी कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड के चेयरमैन श्री अनुज पुरी। इनसे बातचीत करेंगे चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर नजारा टेक्नोलॉजीज और इंडिया बिजनेस ग्रुप के प्रेसिडेंट विकास मिट्टरसेन।
वेलकम टू ऑल इंडिया रेडियो अनुज जी, वी आर स्पीकिंग टू अनुज पुरी। He is the chairman of Anarock Consultants. Earlier he was the chairman of South Asia. आज हमारे साथ हैं, सिर्फ अपने बारे में नहीं बताएंगे, ये हमको है ना बॉम्बे का हाल भी बताएंगे। भाई ना प्रॉपर्टी खरीदें या नहीं खरीदें, रुक जाएं, क्या करें, प्राइसेस का क्या सिचुएशन है। सो पहले मैं आपको पूछूंगा कि आपके ओरिजिनल ग्रोइंग अप इयर्स के बारे में बताइए। अभी तो आप जो हैं सो हैं, उसमें तो हम आएंगे, लेकिन स्कूल कॉलेज क्या हुआ था, आप कहाँ के हैं?
बिल्कुल, पहले तो थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी हियर। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस इंटरव्यू। तो मेरे इनिशियल ग्रोइंग अप ईयर्स जो थे वो दिल्ली के अंदर थे और फिर उसके बाद लंदन में थे। मेरी कॉलेज की एजुकेशन और मैंने अकाउंटिंग
स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स या किधर थे?
नहीं जी, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ।
ओके,
सो मैंने अकाउंटिंग एंड इनिशियल के जो कॉलेज के ईयर्स थे वो मैंने यूके से किए। स्कूलिंग जो थी वो मेरी दिल्ली से थी, स्प्रिंगडेल स्कूल से। और फिर जब मैं यूके से वापस आया तो मैं दिल्ली ना जाके बॉम्बे बस गया।
वेरी गुड। कोई खास बात याद है स्कूल की कॉलेज की?
स्कूल की कॉलेज
कहीं,
की
कहीं आपको प्रिंसिपल ने पुल अप करा हो या ऐसी कोई बात हुई थी?
बहुत ज्यादा बात थी, तभी रियल एस्टेट प्रोफेशन में आया। हाँ। बहुत बारी पुल अप हुआ तभी रियल एस्टेट में आया। रियल एस्टेट है ही ऐसा प्रोफेशन कि इसके अंदर आपको आदमी चाहिए होता है जो काफी हरफन मौला टाइप रहे।
सही बात है। तो आप सीधा बॉम्बे आ गए और शुरुआत कैसे करी, आप कहाँ ज्वाइन करे पहले आके?
तो शुरुआत ऐसे करी कि लंदन में जब मैं लंच टाइम पे घूमता था तो देखता था वहाँ पे कि प्रॉपर्टी कंसल्टेंट्स के बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए होते हैं। आप देखते हैं वहाँ पे लगे हुए होते हैं फॉर सेल। तो मैंने बोला ये इंडिया के अंदर ऐसा कंसेप्ट नहीं है, ये क्यों नहीं हो सकता इंडिया के अंदर। तो उस टाइम पे मैंने बोला कि मैं वापस जाऊंगा इंडिया। ये मिड 90s की बात है कि मैं इंडिया वापस जाऊंगा और मैं यहाँ पर जैसे लंदन के अंदर प्रॉपर्टी कंसल्टेंट्स बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, एक कंपनी मैं वैसे ही खोलूंगा। फिर जब मैंने सोचा इंडिया वापस आने के लिए तो मैंने बोला बॉम्बे आऊंगा, बिकॉज बॉम्बे के अंदर प्रॉपर्टी का मार्केट है।
उस टाइम तो दिल्ली इतना नहीं था,
बिल्कुल नहीं था, और कॉस्मोपॉलिटन था, इंटरनेशनल था, सारी जितनी मल्टीनेशनल्स आ रही थी इंडिया में। तभी आपको याद होगा 93 में खुला था इंडिया, तो मनमोहन सिंह जी उस टाइम पे थे प्राइम मिनिस्टर, बिल्कुल खुला था। जितनी भी फॉरेन की कंपनीज थी वो सिर्फ बॉम्बे ही आना चाहती थी। तो मैंने फिर बोला कि बॉम्बे ही चलता हूँ मैं भी लंदन से वापस। तो बॉम्बे में आके फिर मैंने प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी फर्म खोली, एक चेस्टर्टन मेघराज करके।
हाँ हाँ, नाम सुना है।
भीगी भीगी रातों में, मीठी मीठी बातों में, ऐसे बरसातों में कैसा लगता है। हाँ
ऐसा लगता है तुम बनके बादल, मेरे बदन को भीगो के मुझे छेड़ रहे हो।
ऐसा लगता है तुम बनके बादल, मेरे
चालू तुझे सीने से लगा लूं आ छुपा लूं बरखा से बचा लूं तुझे सीने से लगा लूं आ छुपा लूं दिल ने पुकारा देखो रुत का इशारा देखो उफ ये नजारा देखो कैसा लगता है बोलो
तो चेस्टर्डन जो थे वो मेरे इंटरनेशनल पार्टनर्स थे यूके के थे मेघराज मेरा अपना था तो हमने 50-50 जॉइंट वेंचर एक खोला चेस्टर्डन मेघराज आपके ऑल इंडिया रेडियो के बिल्कुल पास में ही अपना ऑफिस होता था चर्च गेट में हमने खोला अपना ऑफिस यहाँ पर एंड वहाँ पे फिर हम सर्विस करते थे जितनी ये मल्टीनेशनल कंपनीज आती थी जब ये इंडिया आती थी उनको समझ नहीं आती थी कि प्रॉपर्टी कैसे लें यहाँ पे ऑफिस कैसे लें जो एक्सपैट आता था उसके लिए रेजिडेंशियल अकोमोडेशन कैसे लें और इतना महंगा होता था उस टाइम पे आप मानेंगे नहीं जो रेंट होते थे नारीमन पॉइंट में
400-500
रुपए पर स्क्वायर फुट आज की डेट पे भी आपको 200 पे मिल जाता है यहाँ पे आप लगाइए 95 की बात कर रहे हैं हम और आज से डबल रेंटल होता था अगर आपको घर लेना होता था यहाँ पे तो उसका डिपॉजिट जो होता था 24 महीने का रेंट डिपॉजिट आपको देना पड़ता था क्योंकि इतनी स्केर्सिटी थी उस टाइम पे आज की डेट पे आप देखें तो ऑफिसेज खुल गए हैं रेजिडेंशियल काफी खुल गए हैं बहुत आसान हो गया उस टाइम पे आसान नहीं होता था उस टाइम पे अगर आपको घर भी खरीदना पड़ता था तो 18% ब्याज होता था जो इंटरेस्ट रेट होता था होम लोन इंटरेस्ट रेट आज लोग 8-8.5% बोलते हैं बहुत ज्यादा है उस टाइम पे 18-18% हुआ करता था होम लोन रेट तो प्रॉपर्टी का बाजार जो था मिड 90s में बहुत ही नॉन ट्रांसपेरेंट था गवर्नेंस बिल्कुल कम थी स्केर्सिटी बहुत ज्यादा थी कुछ ऐसे लोग थे जिनके हाथ में बहुत ज्यादा प्रॉपर्टीज थी वो लैंडलॉर्ड्स थे वो जमींदार थे तो वही उसको मोनेटाइज करते थे एंड उसके हिसाब से बॉम्बे के अंदर फिर हमने देखा मल्टीनेशनल्स निकल गई क्योंकि उन्होंने बोला ये इतना महंगा है कि हम इंडिया आ रहे हैं कॉस्ट आर्बिट्राज के लिए और इसके अंदर पैसा हमारा बच नहीं रहा क्योंकि इतना महंगा है तो वो फिर बैंगलोर शिफ्ट हो गए
दिल्ली चले गए
लोग पूछते हैं बैंगलोर क्यों गए वो आईटी कंपनीज पहले वो आईटी कंपनी सारी बॉम्बे ही आई थी बट वो प्रॉपर्टी के इतने बड़े दाम हो गए कि वो बोला कि हम आउटसोर्स कर रहे हैं इंडिया पे बट हमें कॉस्ट का तो कोई मुनाफा ही नहीं हो रहा तभी वो बैंगलोर सारे गए
JLL में कब गए आपने अपने कंपनी को क्या करा फिर मेघराज को क्या करा
तो एक दिन ऐसा आया कि JLL से एक प्रोपोजिशन आई कि भाई अगर हम दोनों हाथ जोड़ लें इकट्ठे
तो
हम मर्ज हो जाएंगे तो हम तो इंडिया के नंबर वन प्लेयर बन जाएंगे तो मेरे को उसमें काफी मेरिट मिली मेरे पास अबाउट 1700 एम्प्लॉइज थे JLL के पास 1800 एम्प्लॉइज थे इक्वल था दोनों तो 3500 एम्प्लॉय हो गए तो फिर मैंने अपना बिजनेस जो था वो मर्ज कर दिया और फिर काफी टाइम तक उसका नाम कहलाया जोन्स लैंग लसाल मेघराज सो JLLM शॉर्ट फॉर्म था और फिर जैसे जैसे इक्विटी बिकती गई उस बिजनेस के अंदर मेघराज वर्ड ड्रॉप हो गया और फिर बिगनिंग ऑफ 2017 में मैंने डिसाइड किया कि मैं मूव आउट कर जाऊंगा JLL से
शुरू से ही JLL के चेयरमैन हो गए थे या
शुरू से जैसे ही मर्ज किया
उसी टाइम से हो गए
उस टाइम पे एक एक्सपर्ट होते थे JLL के वो वापस चले गए न्यूयॉर्क एंड फिर मैंने पूरा टेक ओवर कर लिया एज कंट्री हेड एंड चेयरमैन
कितने साल थे वहां पर
मैं 2007 से 2017 तक 10 साल चेयरमैन कंट्री हेड JLL इंडिया
गाना सुनाएंगे किशोरदा का
हम दोनों तो प्रेमी दुनिया छोड़ चले जीवन की We'll be right back. में तोड़ चले
ऑफ एनारॉक अ बिग रियल एस्टेट फर्म तो आपने बड़ी कंपनी छोड़ के अपना फिर से फर्म क्यों शुरू करा
बोलते ना एक बार ही एंटरप्रेन्योर तो बार-बार एंटरप्रेन्योर
द बग बिट यू
द बग बिट मी अगेन
ओके
तो अच्छा था 10 साल बड़ा अच्छा मैंने समझा देखा कि ग्लोबल कंपनी में काम करना उनके जो कंप्लायंस सिस्टम्स एथिक्स प्लेटफॉर्म एचआर का मार्केटिंग का फाइनेंस का वो सब चीजें सीखी और एंटरप्रेन्योर तो मैं था ही दिल से तो अभी जब ये अवतार लेके आया तो ये इस बारी दोनों का मिक्स है ये एंटरप्रेन्योरियल है अपनी स्पिरिट में येट इंफ्रास्ट्रक्चर और जो प्लेटफॉर्म है वो पूरा मल्टीनेशनल जैसा है ताकि वो इतना रबस्ट होए कि इसके ऊपर अगर जितना भी भार पड़े तो प्लेटफॉर्म टूटे ना अदरवाइज क्या होता है इंडिया के अंदर एक बहुत गलत वर्ड यूज होता है पहले हम बड़ा प्राउड फील करते थे उस वर्ड से अभी आज की डेट में मेरे हिसाब से वो गलत है जिसको बोलते हैं जुगाड़
वो
जुगाड़ नहीं
निकलते जा रहा है
बिल्कुल बस उसी ने खराब किया है आई थिंक बस अब यही है कि वो बिजनेसेस में से जुगाड़ निकल जाए रियल एस्टेट में सबसे ज्यादा ये यूज्ड वर्ड है जुगाड़ तो अभी अभी आपने बिल्कुल ठीक बोला कि ये वर्ड जो है ये आहिस्ता आहिस्ता निकलता जा रहा है बिजनेसेस से
तो उस टाइम पर जब आप ज्वाइन करे और अभी तक मतलब जब तक जेएलएल में थे बिल्डर्स का रेपुटेशन बड़ा नेगेटिव था और काम भी कुछ ऐसा करते थे जो रेपुटेशन हो गया था लेकिन अभी कुछ ऐसा लग रहा है कि जनरली जो बड़े बिल्डर्स हैं वो काफी अच्छे हो गए हैं दे आर ट्रूथफुल ऑनेस्ट I'm not even talking about Mahrera. वो तो अभी आया है, उसका तो इफेक्ट मालूम पड़ेगा. तो कैसे डील करते थे फिर आप ऐसे लोगों के साथ?
तो आप देखिए, जितनी भी बॉलीवुड फिल्म्स होती थी उसके अंदर जो विलन होता था वो बिल्डर ही हुआ करता था. तो ऐसी परसेप्शन है, कुछ तो रियलिटी भी है. कुछ बिल्डर्स ने ऐसा किया भी जिसके अंदर उन्होंने काफी एडवांटेज उठाया, क्योंकि कोई हमारे यहाँ पे लॉ सिस्टम नहीं होता
नहीं।
था मारेरा से
सुनवाई नहीं थी कोई भी किसी की.
कोई सुनवाई नहीं थी बिल्कुल. कोर्ट में चले जाइए 20-20 साल लग जाते थे उसके अंदर. मारेरा था नहीं उस टाइम के ऊपर. तो एज ए रिजल्ट ऑफ इट बिल्डर्स ने काफी एडवांटेज उठाई है. मेरे हिसाब से अब जो आप रिजीम देख रहे हैं लास्ट 12 महीने से, ये बहुत कंसोलिडेट हो चुका है रिजीम. इसके अंदर जितना अनएथिकल बिल्डर है, जितना बिल्डर है जिसके ऊपर फाइनेंशियल डिसिप्लिन नहीं था या कॉर्पोरेट गवर्नेंस नहीं थी या जो कस्टमर की सेंट्रिसिटी नहीं थी, वो आज की डेट पे खत्म होता जा रहा है. मेरे हिसाब से आप देखेंगे 5 से 6 बिल्डर 10 में से अगले 24 महीने रहेंगे ही नहीं बिजनेस में. इतना ज्यादा कंसोलिडेशन है, 50-60% का कंसोलिडेशन चल रहा है इस टाइम पे. क्योंकि ये जो है, ये बड़ा प्रोफेशनल ट्रेड हो गया, बड़ा मैच्योर हो गया. इसके अंदर सिर्फ जो एथिकल है, जिनके पास पैसा है पॉकेट के अंदर, जिनके पास एबिलिटी है टू डिलीवर करने की और कस्टमर की देखभाल करी है इन्होंने पुरानी, वही बचेंगे. तो जो आपने बोला बिल्कुल ठीक है कि इसके अंदर आप देखेंगे एथिकल नेम, बड़े नाम, एंड आज से 12-24 महीने के बाद ये प्रॉपर इंडस्ट्री कहलाएगी. आज की डेट पे बहुत बड़ा नाम खराब था, 24 महीने बाद इसका नाम ठीक हो जाएगा. पीपल रिस्पेक्ट देंगे इस सेक्टर.
अभी चेंज ओवर चालू है, मेरे ख्याल से 10 साल लग जाएंगे. रियली आप बोलते हैं 2-3 साल, 2-3 साल में नहीं होएगा. जो पहले निकलेंगे, फिर जो अच्छे हैं और टिकेंगे, उनका रेपुटेशन बिल्ड होएगा, सब चीज में टाइम लगता है.
टाइम लगता है, बिल्कुल आई एग्री.
एक मिनट हम जरा एक गाना सुन लेते हैं, फिर आते हैं अनुज जी के पास.
फूलों के रंग से, दिल की कलम से, तुझको लिखी रोज पाती, कैसे बताऊं किस किस तरह से, पल पल मुझे तू सताती. तेरे ही सपने लेकर के सोया, तेरी ही यादों में जागा, तेरे ख्यालों में उलझा रहा हूँ जैसे कि माला में धागा. हाँ बादल बिजली चंदन पानी जैसा अपना प्यार लेना होगा जन्म हमें कई कई बार. हाँ इतना मधुर इतना मधुर तेरा की सरगम धड़कन की बीना सपनों की गीतांजलि तू मन की गली में महके जो हरदम ऐसी जूही की कली तू छोटा सफर हो लंबा सफर हो सुनी डगर हो या मेला या तू आए मन हो जाए भीड़ के बीच अकेला. हाँ बादल बिजली चंदन पानी जैसा अपना प्यार लेना होगा जन्म हमें कई कई बार.
हो पश्चिम उत्तर हो दक्षिण तू हर जगह मुस्कुराए जितना ही जाऊं मैं दूर तुझसे उतनी ही तू पास आए आंधी ने रोका पानी ने टोका दुनिया ने हंसकर पुकारा तस्वीर तेरी लेकिन लिए मैं कर आया सबसे किनारा हाँ बादल बिजली चंदन पानी जैसा अपना प्यार लेना होगा जन्म हमें कई कई बार हाँ इतना मधुर इतना मधुर तेरा मेरा प्यार लेना होगा जन्म हमें कई कई
आप बताइए अभी थोड़ा एनारॉक के बारे में आप थोड़ा सा तो बोले ही हैं लेकिन कैसे शुरू हुआ और आपने दो तीन साल ही हुए तो हैं
करेक्ट बिल्कुल
तो एकदम 1200 1500 लोग कैसे ऐड हो गए इतना जल्दी कैसा एक्सपेंशन कैसे हो गया और कितनी ऑफिसेज हैं आपकी
सर हमारे पास अभी 1500 के करीब स्टाफ है और 14 ऑफिस है उनमें से एक दुबई में है बाकी 13 जो ऑफिसेज हैं वो सारे इंडिया के अंदर हैं इसके अंदर जो मॉडल है ये बड़ा एक मिक्स है टेक्नोलॉजी डिजिटल और दूसरी तरफ मैन पावर का सो इसके अंदर हम जो हैं न्यू होम्स नए घर जो हैं वो अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू बेचते हैं तो नए होम जो हैं वो बिल्डर से लेते हैं एक्सक्लूसिवली अच्छे बिल्डर से जिनको हमें पता है कि ये डिलीवरी
राइट्स ले लेते हैं
एक्सक्लूसिव राइट ले लेते हैं और उसको हम अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पे एडवर्टाइज करते हैं उससे जो प्रोस्पेक्टिव इंक्वायरीज आती है हमें
उसको आदमी फॉलो करते
बिल्कुल एब्सोल्युटली तो ये एक मिक्सचर हो गया डिजिटल और टेक्नोलॉजी विद ऑफलाइन अभी क्या नहीं तो नॉर्मली होता है या तो ऑफलाइन पूरे लोग काम करते हैं या डिजिटल
ऑनलाइन
या ऑनलाइन है अभी आपने देखा वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट को खरीदा तो ऑफलाइन ऑनलाइन मर्ज हो गए हमारी भी यही जो ट्रेजेक्टरी है कि ऑफलाइन ऑनलाइन मर्ज होएगा इंक्वायरी आपको ऑनलाइन आएगी पर सर्विसिंग आप उसकी जो ऑफलाइन करेंगे तो ये मॉडल है अपना एनारॉक में
वेरी गुड तो आपकी वेबसाइट भी है क्या जिसपे लोग जाके देख सकते हैं क्या अवेलेबल है
हमारी वेबसाइट भी है
क्या नाम से है
.com एंड उसके अंदर हम गूगल से भी ट्रैफिक लाते हैं लिंक्डइन से भी लाते हैं फेसबुक से भी लाते हैं पोर्टल्स जो हैं रियल एस्टेट की वहां से भी ड्राइव करते हैं सो कुछ अपने आप आता है anarock.com पे और कुछ हम ड्राइव करते हैं दूसरी सोशल मीडिया से
इतना मिला रे मन का इतना मिला रे मन का नहीं बाहर चैन नहीं घर में मन मेरा धरती पर और कभी अंबर में उसको ढूंढा हर नगर में हर डगर में गली गली देखा नया नहीं उठा रे मीत ना मिला रे मन का मीत ना अपने ही प्यार को समझाओ रे रोज मैं अपने ही रोज मैं अपने ही प्यार को समझाओ वो नहीं आएगा मान नहीं पाओ शाम ही से प्रेम दीपक मैं जलाऊं फिर वही दीपक तू मैं बुझाए रे मीत ना मिला रे मन का मीत ना से मन मेरा आस लिए डोले देर से मन मेरा आस लिए डोले रे देर से मन मेरा देर से मन मेरा आस लिए डोले प्रीत भरी पानी साज मेरा बोले कोई सजनी एक खिड़की भी न खोले लाख तराने रहा मैं सुनाए रे मीत ना मिला रे मन का मीत ना मिला रे मन का कोई तो मिलन का
कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस पूछूंगा
बिल्कुल
ये सिचुएशन अभी है ना दो साल से पहले तो बस दाम आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दो आपका पांच साल में डबल हो गया
Correct.
सबको पता था कि ऊपर ही जाने वाला है तो इन्वेस्टर्स बहुत थे जो पैसा प्रॉपर्टी में लगाते थे शेयर्स में नहीं लगाते थे अब वो दो साल से रिवर्स हो गया है
Correct.
अब है ना प्रॉपर्टी में कोई लगाता नहीं है शेयर मार्केट बढ़े जा रहा है तो ये आदमी अगर मुझे आज कहीं खरीदना है तो शुड आई बाय नाउ या शुड आई वेट
सो सर काफी आपने कठिन क्वेश्चन पूछा है मेरे से
एंड मैं आपको वार्न करा था
बिल्कुल तो मैं इसका आंसर दो प्रकार के अंदर दूंगा अगर आप इन्वेस्टर हैं अगर आप आज की डेट पे इन्वेस्टर हैं तो मेरे हिसाब से अभी आप रुक जाइए क्योंकि प्रॉपर्टी के डिपेंड करता है आप किस माइक्रो मार्केट के अंदर जाना चाहते हैं जैसे अगर आप पनवेल की साइड पे जाना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा टाइम है आज की डेट पे खरीदने में एयरपोर्ट आ रहा है बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डल रहा है कम से कम 1,00,000 करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर प्लस इंडस्ट्री उस एरिया के अंदर आ रही है बड़े बड़े ऑफिसेज हैं मॉल्स हैं हेल्थ केयर है एजुकेशन है होटल्स हैं रेजिडेंशियल के अफोर्डेबल हाउसिंग की बहुत सारी स्कीम आ रही है तो अगर आप इन्वेस्टर हैं तो या तो एक ऐसा एरिया देखिए जिसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर अगले 3-4 साल में आने वाला है तो आपकी प्रॉपर्टी के दाम ऊपर जाएंगे अदरवाइज आप वेट करिए इन्वेस्टर अगर हैं अगर आप नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे एरियाज तो वेट करिए और अगर आप एंड यूजर हैं इसके तो बिल्कुल खरीदिए एंड यूजर मैं हमेशा बोलता रहा हूँ पिछले 20 साल में कि अगर आपको अपने मन की प्रॉपर्टी मिलती है
तो ले लो
बिल्कुल ले लो अभी उसके अंदर आप थोड़ा ये जरूर देख लीजिए कि भाई स्कूल आसपास है सोशल फैब्रिक है
वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है
वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपको वो मनपसंद की मिल रही है और आपका जो सोशल फैब्रिक है चाहे बच्चों के स्कूल हो या आपके ऑफिस हो बहुत ज्यादा दूर नहीं है कठिन नहीं है उसके अंदर तो प्लीज आप ना जाके खरीदिए बिकॉज ये तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है ये तो ऐसा है नहीं कि आज
और कल बेच रहे उसके लिए तो कोई टाइम रहता ही
उसका कोई टाइम नहीं
रहता है तभी ले लेना चाहिए
बिल्कुल एब्सोल्युटली सो वही है पर इन्वेस्टर हैं तो फिर आप माइक्रो मार्केट देखिए कि किस माइक्रो मार्केट के अंदर एप्रिसिएशन होगी जैसे मैंने एग्जांपल दिया पनवेल मेरे हिसाब से कहीं पे भी पनवेल आप ले सकते हैं
इसी के लगता हुआ नेक्स्ट मेरा प्रश्न है आफ्टर अ सॉन्ग
आपकी आंखों में कुछ
महके हुए से राज है आपकी आंखों में कुछ महके हुए से राज है के अंदाज है आपकी आंखों में कुछ महके हुए से राज है हिले तो मोगरे के फूल खिलते हैं कहीं लब हिले तो मोगरे के फूल खिलते हैं कहीं आपकी
हम देख रहे हैं कि लोग खरीदने के जगह रेंट कर रहे हैं पहले इंडिया में रेंट नहीं करते थे लोगों को लगता था कि भैया रेंट के फ्लैट में हम रहेंगे तो लोग बोलेंगे देखो इसके पास पैसा नहीं है खुद का घर ही नहीं है
करेक्ट
लेकिन अब वो पॉलिसी जरा फीलिंग चेंज हो गई है इंडिया में काफी लोग रेंट कर रहे हैं प्लस मैंने ये देखा है कि भैया ना रेंट में सिर्फ 2% लगता है प्रॉपर्टी के वैल्यू का पर ईयर वेरस आप बैंक में डालो तो उसमें भी 5% मिलता है
बिल्कुल
तो लोग ये सब गणित करके रेंट में चले गए आपका क्या ख्याल है इसके बारे में क्या एक्सपीरियंस है
बड़ा बड़ा जबरदस्त आपने पूछा है इसके अंदर आप देखिए पहली जो थी आज से एक जनरेशन पहले तक लोग खरीदना चाहते थे एंड खरीदना इसलिए चाहते थे बिकॉज वो बोलते हैं कि भाई हम जब थोड़े ओल्ड हो जाए तो हमारे पास कोई ऐसा ना हो कि पॉकेट से पैसा देना पड़े बिकॉज गवर्नमेंट तो जो है कोई पेंशन स्कीम इतनी चलती नहीं अगर आप प्राइवेट नौकरी में है कोई पेंशन स्कीम नहीं है हेल्थ केयर कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं है ऊपर से अगर रेंट का भी और खर्चा पड़ गया तो मुश्किल हो जाती है तो लोग सोचते थे एक तो अपना घर होए अपने सिर पे छत होए दूसरा हो सके तो एक और घर ले लें हम उसका रेंट आता रहे ताकि ओल्ड एज में वो अपने को रेंट मिल जाता है उसके अंदर से उस हिसाब से लोग खरीदते थे सारे के सारे एंड क्लियरली ये बड़ा अच्छा था क्योंकि प्रॉपर्टी की प्राइसेस ऊपर एप्रिशिएट होती जा रही थी आपका अपना घर होता था
एंड आपको एक और घर मिल जाता था उससे रेंटल की इनकम आ जाती थी. आज की जो जनरेशन है जो मिलेनियल जनरेशन है वो बिल्कुल इस चीज में बिलीव नहीं कर रही है. वो बोल रही है कि भाई पहली बात तो 2% मेरी कॉस्ट है, मैं क्यों 2% के लिए इतना करूं. सेकंड मेरे को फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, आज मेरे को इधर रहना है, कल मेरे को बैंगलोर जाना है, परसों पुणे जाना है, यू नो चौथ मेरे को यूएस जाना है, तो मैं क्यों अपने आप को इससे पाबंदी में करूं. दूसरा सर है उनकी शादियां लेट हो रही हैं. जो एक जनरेशन पहले थी उसकी शादी नहीं होती थी अगर घर ना ठीक मिले. वो सबसे पहले यही पूछा करते थे कि भाई रहते किधर हैं, खुद का है कि नहीं है. बिल्कुल बिल्कुल, अपनी डॉटर देने से पहले हमेशा आदमी पूछता था कि भाई अपना है, फैमिली का है, किसका घर है वहां पे. आज की डेट पे इनकी शादियां लेट होती है. अच्छा, इनके कोई गेस्ट इतने ज्यादा आते नहीं इनके घर पे. हमारे टाइम पे तो काफी गेस्ट आते थे. अच्छा, बच्चे जो हैं बड़ी लेट होते हैं ये प्रोफेशनल्स के, तो इसलिए ये सोचते हैं कि भाई आज हम छोटे घर में रह लेते हैं, जैसे जैसे हमारा प्रोग्रेस होगा हम रेंट करते बड़े बड़े घर पे चले जाएंगे और फिर उस हिसाब से हम देखेंगे. हमारा डिफरेंट जो जनरेशन थी वो डिफरेंट है. आज की डेट पे लोग गाड़ियां भी नहीं खरीदते ज्यादा बिकॉज ऊबर मिल गई आपको, ओला मिल गई. सिमिलरली घर के अंदर भी प्रेफरेंस उनकी रह रही है कि हम रेंटल लें रादर देन खरीदें.
मैं जब ले रहा था 20-25 साल पहले घर मुझे खरीदना था, मैं सोचा कि भाई अभी आके खरीदने के लायक नहीं है, रेंट कर लेते हैं. हमारे फादर इतना गुस्सा हुए और बोले तो कुछ भी कर ये घर से बाहर नहीं जाएगा जब तक खुद का घर नहीं होएगा. तो मुझे लेना ही पड़ा. इतना अभी भी लगता है कि कितना पैसा वेस्ट कर दिया मैंने. तो आई एम देयर इन द सेम हाउस, बट आज के दिन तो टोटली चेंज हो गया है
बिल्कुल
सिचुएशन.
मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा. छूकर मेरे मन को क्या इशारा, बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा. छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा. कहे जीवन भर तेरे लिए मैं गाऊं, तेरे लिए मैं गाऊं गीत तेरे बोलों पे लिखता चला जाऊं, लिखता चला जाऊं मेरे गीतों में तुझे ढूंढे जग सारा. छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा. छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा. आजा तेरा आंचल ये प्यार से मैं भर दूं, प्यार से मैं भर दूं खुशियां जहां भर की, तुझको नजर कर दूं, तुझको नजर कर दूं. तू ही मेरा जीवन, तू ही जीने का सहारा. छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, बदला ये
मौसम लगे प्यारा जग सारा छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा
ये क्वेश्चन तो मैंने ऑलरेडी पूछ लिया आपको जो अगला है विल द प्राइसेस ड्रॉप फर्दर अभी भी फिर से पूछता हूँ और गिरने वाले हैं या अभी स्टेबिलिटी हो गई है
देखो मेरा जहाँ तक कहना है कि काफ़ी स्टेबल हो चुका है ये मार्केट पिछले 12-18 महीने के अंदर बिटवीन 7-17% प्राइसेस इसकी करेक्ट हुई हैं इस लेवल पे जिस लेवल पे इस टाइम पे प्राइसेस हैं इसमें बिल्डर पैसा कमा नहीं रहा बिल्कुल बहुत कम है एंड अगर आप देखेंगे तो न्यू लॉन्चेस जो हैं काफ़ी नीचे चले गए हैं सेल फिर भी थोड़ी 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 होती रहती है जो आपकी अनसोल्ड इन्वेंट्री है वो महीने बाय महीने कम ही होती जा रही है बिकॉज न्यू लॉन्च आ नहीं रहे पर सेल ठीक हो रही है तो जितनी अनसोल्ड इन्वेंट्री का ओवरहैंग क्रिएट हो गया था वो कम ही होता जा रहा है सो ये प्राइस नीचे नहीं लेके आ पाएंगे बिकॉज एट दिस प्राइस इनकी कोई प्रॉफिटेबिलिटी खास बन नहीं रही है इसके अंदर इसके और नीचे लेते जाएंगे तो खूब लॉसेज ही चलते जाएंगे
पर उनका चॉइस क्या है मैंने सुना है कि अभी ये सब सर्टेन एरियाज लोअर परेल वगैरह में इतनी नई प्रॉपर्टी आ रही है
करेक्ट
कि उसके बायर्स ही नहीं है तो बना के तो खड़े हो जाएंगे बिल्डिंग्स खड़ी हो जाएंगी खाली रहेंगे तो बेचना ही पड़ेगा ना
सर उसके अंदर क्या कर रहे हैं कि या तो अपार्टमेंट को छोटा साइज कर रहे हैं उसको रीसाइज करके कुछ कर रहे हैं क्योंकि किसी तरह से तो इनको उसको
टर्नओवर तो करना ही बैंक लोन भी रहते हैं
बिल्कुल
प्राइवेट लोन भी रहते
हैं
पार्टनरशिप्स भी हैं लैंड ओनर के साथ पार्टनरशिप है सब जगह उनको रिजल्ट तो देना ही है
बिल्कुल
और नया कैसे बनाएंगे पहला नहीं बिकेगा
और लोन काफी महंगे हैं इस टाइम पे जो है तो वो किसी ना किसी तरह स्कीम से वो उसको छोटा कर देते हैं रीसाइज कर देते हैं टिकट साइज को कम कर देते हैं उस हिसाब से निकाल देते हैं बट बहुत ज्यादा ऐसे प्राइस रिडक्शन का माहौल लगता नहीं है
okay.
हो पाए बिकॉज इनके पास एबिलिटी नहीं है और इसके नीचे लेके जाने
तो आपके हिसाब से जिसको घर चाहिए खुद के लिए
वो खरीद ले
अभी समय सही है
सही है बिल्कुल बिल्कुल
थैंक यू कुछ मैं भूल गया हूँ क्या पूछने आप कुछ और बोलना चाहेंगे अपने तरफ से
आपने सारे ही कवर कर लिया बहुत अच्छी तरह कवर कर लिया
और कुछ है बोलने के लिए
नहीं थैंक यू
अपने 3-4 लाख दर्शक सुन रहे हैं आपकी बात को कोई और पीस ऑफ एडवाइस दैट यू हैव
मेरे हिसाब से दो और पीस ऑफ एडवाइस है एक मैं वेरी क्विकली बोलूंगा कि जो ऑफिस है वो काफी अच्छे चल रहे हैं इस टाइम पे अनलाइक रेजिडेंशियल जिसके अंदर थोड़ी सी मार है ऑफिस जो है काफी अच्छे चल रहे हैं लीजिंग काफी अच्छी चल रही है ऑफिस की तो वो एक इन्वेस्टमेंट के तौर से लोग देख सकते हैं उसमें 8-9% आपको रिटर्न आ जाती है उसके अंदर और दूसरा ये वाला जो फेज है ये काफी कंसोलिडेशन का फेज है इसमें वो ध्यान से बिल्डर्स का जो है माल वो खरीदें क्योंकि ये कंसोलिडेशन के अंदर जैसे मैंने पहले बोला 5-6 बिल्डर जो हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे ये कंसोलिडेशन अभी आप ऐसा ना घर खरीद लीजिए जो 5-6 बिल्डर में हो जिधर आप अटक जाए ये दो एडवाइस मैं देना चाहूंगा आपके लिसनर्स को
थैंक यू अनुज पुरी साहब आप आए हैं ऑल इंडिया रेडियो 100.1 गोल्ड एफएम थैंक यू वेरी मच
फॉर हैविंग मी थैंक यू
समझ सको मुझे भी समझाना
लिखा है तेरी आँखों में किसका जवाब सा किसी तमन्ना का
खाना
लिखा है तेरी आँखों में कितना अफसाना
अगर इसे समझ सको मुझे भी समझाना
लिखा है तेरी आँखों में कितना अफसाना जो कुछ नहीं
रोजाना
लिखा है तेरी आँखों में किसका अफसाना
अगर इसे समझ सको मुझे भी समझाना
लिखा है तेरी आँखों में किसका अफसाना
श्रोताओं 100.1 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी मुंबई की एफएम गोल्ड प्रसारण सेवा में अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम छूलो आसमान में एनरॉक प्रॉपर्टी कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड के चेयरमैन श्री अनुज पुरी की बातचीत चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर नजारा टेक्नोलॉजीज और इंडिया बिजनेस ग्रुप के प्रेसिडेंट विकास मिट्टर सेन के साथ। अब यह कार्यक्रम समाप्त होता है। सहयोग सृष्टि जाधव और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।